भवतान्तरां ओकः सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायिनौ अभूतान्तराः सहस्रपरिवत्सरान् हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायिनौ अवदान्तरामोकः सखायो मानसायनो हंसो दो हंस अहम मैं च तथा त्वं तुम च भी आर्य हे आर्य सखायो दो मित्र मानसायनो मानस सरोवर में एक साथ रहते थे अभूताम हो गए अंतरा पृथक व निसंदेह हो गए अपने असली घर से सहस्त्र हजारों परी लगातार वत्सदान वर्षों तक अनुवाद तात्पर्य शिष्यमने श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा हे मित्र मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य है हम एक ही मानस सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते थे यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर है। तात्पर्य जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है जहां वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। चूंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं किंतु जब जीव स्वयं आनंद उठाना चाहता है तब वह भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में भी भगवान उनके साथ परमात्मा रूप में अथवा सुजीत के रूप में रहते हैं। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके साथ है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है यद्यपि भगवान उनके मित्र के रूप में उनके साथ साथ रहते हैं किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाते। हम अज्ञान निमिरंधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्गयतगिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनलिनतारिणं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे राम 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 हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त अंसा हम चमचार्य सखायो मानसायनो अभुतमंतरा वोक सहस्त परिवत्सरा हे मित्र, मैं और तुम दोनों अंशों के तुल्य है। हम एक ही मानस सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों के साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास स्थान से दूर हैं। तो इस श्लोक श्री नारद जी प्राचीन परिषद महाराज को उपदेश देते हुए बता रहे हैं। कथा आप सब लोग जानते आ रहे हैं, और इस कथा के अंतर्गत हम लोग थोड़े से दो तीन श्लोक पीछे जाए तो न मलई ध्वज की पत्नी बने हुए पुनंजन उनके पति के स्वधाम चले जाने के बाद और रुदन करती रही, लेकिन चूंकि एक शुद्ध भक्त की उन्होंने सेवा किया था, इसलिए उनको ब्राह्मण के रूप में भगवान उनके सामने उपस्थित होकर के उनको अपने मुख से उपदेश करते हैं, अर्थात परमात्मा। वो परमात्मा एक ब्राह्मण के रूप में आकर के उनको उपदेश करते हैं। आगे भी हम लोग देख चुके कि जब महाराज मणिध्वज के साथ साथ उनका विवाह हुआ तो उस श्लोक में यदश्चया लिखा है। यदश्चया का अर्थ होता है किसी भाग्य से, और किसी भाग्य से साधु के साथ उनका विवाह हुआ और उनका परिणाम हुआ उनकी सेवा के लिए उनके साथ वन में गई और परिणाम स्वरूप परमात्मा स्वयं उनके सामने उपस्थित होकर के उनको अपनी याद दिला रहे हैं। ये बहुत उपाधि कुछ शिक्षा है इसमें। सबसे पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं परमात्मा, कातुम क्वास को वायम सयानो यश सोचसी जानासी किम सखायम मम ये नाग्रे विचचर था। बोले तुम कौन हो और तुम किसके लिए शोक कर रही हो और ये सोया हुआ तुम्हारा कौन लगता है। महाराज के स्वधाम जाने के बाद उनके देह को चित्ता पर रख करके विलाप कर रही थी। जानती हो तुम्हारा असली संबंधी मैं हूं, ये कह रहे हैं कि जाना सी किम सखायम, तुम अपने सखा को जानती हो। मान लीजिए कि वो कहे कि नहीं जानती नहीं है, तो बोले माम ये ना अग्रे विचर्च। वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और अनेक काल से हम दोनों साथ में विचरण करते हैं। वस्तुतः जीव का ही दुर्भाग्य है कि एक साथ में अपने हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हुए भी वो उनको पहचान नहीं पा रहा है, और उसका कारण केवल मात्र भोगों में दृष्टि। सांसारिक भोगों के प्रति जितना दृष्टि गाढ़ रहता है उतना व्यक्ति उन परमात्मा ज्ञान में अज्ञान रहता है, या उनको भगवत विज्ञान पले नहीं पड़ता है, कभी भी उनकी बुद्धि में यह नहीं आता है। वो कारण एकमात्र है वह भौतिक भोगों की इच्छा। इनको भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं कापि स्मरसि चात्मन अभिज्ञातम सखम सखे न हित्वा माम पदम अन्विच्छन भोम भोग रतो गता। तुम कैसे जानोगे, मैं तो तुम्हारा अज्ञात सखत्व करता हूं। एक अज्ञात सखा के रूप में तुम स्मरण करो इस बात को। किस बात को, न हित्वा माम पदम अन्विच्छन, तुम मुझे छोड़ करके इस पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए एक शरीर को खोज रहे थे। पद्म अर्था तो शरीर जिसके द्वारा भोग भोगा जा सकता है। हम सब यही काम करते हैं, शरीर के चलते बेहोश रहते हैं माया में, और इन अहंता ममता के कारण अपने असली ममत्व जहां उत्पन्न करना चाहिए या असली जो हमारे संबंधी है उनको छोड़ करके नकली संबंधियों के लिए रो रहे हैं या संसार के भोगों के लिए रो रहे हैं। तथापि भी भगवान उनको मदद करते रहते हैं। भगवान इतने सहिष्णु है कि उनको भूले रहने के बावजूद भी जीव को सब कुछ सप्लाई उन्हीं से आती है। सप्लाई तो ठीक है, उन अनेक जन्मांतर में इन विषय भोगों की क्या भावना है वो भावना की याद भी भगवान देते हैं। सर्वसच्चा हम हृदय सन्निविष्ट स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये स्मृति ध्रुवा स्मृति नहीं है, ये स्मृति व्यक्ति जो कुछ भोगना चाहते हैं वो भूल जाता है लेकिन भगवान उनको वो स्मृति दिला देते हैं, लो स्मृति लो और तुम जो चाहते हो वो भोग भोगो। इसमें किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के पास हृदय नहीं है। परमात्मा असंख्य मां का हृदय रखते हैं अकेले, इतने वत्सल है लेकिन वो क्या करे, करे क्या, क्योंकि उन्होंने कुछ वैदिक कुछ वांग्मय जो लिटरेचर है साहित्य है वो उनका आदेश है, उनका लंघन करके वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी बहुत ललायत है, हम लोग बाद में देखते हैं कि किस प्रकार भगवान इतने ललायत है जीव को वैकुंठ ले जाने के लिए है? उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इनको देख लिया जाए इन श्लोकों को। तो भगवान ये जीवात्मा के लिए ये जगत की रचना करते हैं, बाकी तो भगवान को यहां सूर्य और चंद्र इत्यादि रख करके बहुत खर्चा है। जैसे गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जैसे मेंटल हॉस्पिटल मेंटेन करती है, मेंटल हॉस्पिटल पागलों का हॉस्पिटल, उसमें गवर्नमेंट को खर्चा है। वो तो लोग ताला मारना चाहते लेकिन पागल लोग रहेंगे तब तक हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, क्या करें। ते समझिए कि हम लोग पागल जैसी स्थिति में है, लगभग पागल हो जाते हैं भोगों के पीछे, इन शरीर को ध्यान में रखते हुए अहंता और ममता में इतने पगला जाते हैं है? भगवान को सोचते तक नहीं। तथापि भी भगवान हम इस जीव के हृदय में उनके साथ रहते हैं। बताइए कोई है ऐसा जिनकी ओर देखता भी नहीं जीव है? हमारी ओर कोई न देखे कितना गुस्सा आता है। कभी कभी लोग प्रचार करके थक जाते, लोग सुनते नहीं है तो प्रचार लोग बोलते हैं कि हवा बंद कर दीजिए ना थोड़ी देर, और जो जप करेगा उनको हवा मिलेगा। ऐसा कभी कभी गुस्सा आ जाता है प्रचारकों को, अरे इतना समझाने पर भी अगर बात दिमाग में नहीं आ रही है हवा बंद करके दो ना भाई, आपके लिए एक सेकंड की बात है। पर भगवान इतने सहिष्णु है वो कैसे अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं, है ना। भगवान समझा रहे तुम समझो। देखिए ये जो बात इन श्लोकों में चल रही है इससे भगवान का हृदय मालूम पड़ रहा है कि भगवान का कितना वत्सल हृदय है। क्या जरूरत है उनको, कमी हो गया वैकुंठ में, वो दासों का कमी हो गया क्या इसको प्रचार कर रहे हैं। ये जीवों के प्रति या हमारे प्रति जीव की ये भगवान की उत्कंठा है, अत्यंत उत्कंठित है भगवान। इस श्लोक में और भी याद दिला रहे हैं, ये 54वें श्लोक में कहते हैं अंसाव अहम च त्वम चार्य, हे आर्य थोड़ी बहुत समझ उसमें आई है ना, इसलिए उनको आर्य बोल रहे हैं। बाकी शास्त्र में तो बद्दा शब्द लिखा है, हंसम गिद्धाणाम, ये हंस था लेकिन गिद्धों का काम कर रहा है। ने पंचम स्कंद में उन गायत्री उच्चारण में भरत महाराज श्लोक बोले हैं, ये तो हंस था लेकिन आज गिद्ध हो गया है। उनकी दृष्टि सदैव भोगों में लगी रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं, हे आर्य, हम दोनों सखा इस मानस सरोवर के हंस है, और कौवे की तरह भोग में मति नहीं रखना चाहिए, ये अर्थ में है। यद्यपि कोई आचार्य नहीं बोले हैं, लेकिन तिस पर भी एक मोटे स्थूल बुद्धि से भी हम सोचे, ये सोचना चाहिए ना। भगवान इतना समझा रहे, देखिए भगवान महान है इसलिए उनकी भाषा भी इतनी महान होती है। वो एकदम शिष्ट रूप में समझा रहे, मानस आयनो सखायो चार्य, ये आर्य लोग वही उन मानस सरोवर के हंस एकता पक्ष में भगवान और जीव एक साथ में हृदय में रहते हैं, इसको भगवान बता रहे। कहते तुम याद करो, याद करो, क्या याद किया जाए? तो बोले अभूता अंतरा ओ कह अंतरा, हम लोग घर बार बगैर के रहे, तुम्हारे पास घर नहीं था तभी भी तुम्हारे साथ में था। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, वो कहते हैं, ओको ग्रह अंतरा विनीव वा शब्दे वार्थे सहस्तम परिवत्सरान महाप्रलया च अर्थ। जब जीव सुषुप्ति का भोग करते हैं, अर्थात जब इस जगत को नहीं रखते हैं भगवान, भूत्वा प्रलय इत्यादि जैसे भगवद्गीता में बताया गया है, उन प्रलय के समय जीव सुसुप्ति अवस्था में रहता, भगवान उनके साथ वहीं लगे रहते। बोले बिना शरीर के भी मैं तेरे साथ रहा। हाँ? हमारे इस संसार में हमारे कितना भी प्रेमी कोई व्यक्ति है, हाँ? हमेशा साथ में नहीं रहता है, रहता है क्या? और हृदय के घुस में घुस करके थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, भावना रहती है मेरी है या उनका मेरा है, ऐसा भाव रहता है, हमेशा थोड़ी रहते हैं। वो भी हृदय में खाली भाव, लेकिन भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में भावना के साथ नहीं है, वो खुद स्वयं आकर के भगवान के उपकार को जब तक जीवात्मा समझता नहीं है ना, तब तक वो क्यों भगवान का भजन करेगा? इसे शास्त्र में ये जो सारी बातें लिखी गई है वो हमारे उपदेश के लिए लिखा गया है। ये जो कथानक प्रस्तुत हो रहा है ये महान भक्त नारद जी के द्वारा हम सब लोग को एक महा उपदेश। प्राचीन परिषद केवल माध्यम मात्र है ना। जब तक हम भगवान के उपकार को बराबर नहीं जानेंगे कि हमारे लिए क्या क्या भगवान नहीं करते हैं, तब तक क्यों भजन करने के लिए जाएंगे? जितनी मात्रा में भगवान के उपकार को, इनके रूप गुण लीला वो बाद में आता है, पहले उपकार। क्योंकि जहां किसी का उपकार होता है ना, व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, अरे इन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, और मैं एक इतना कृतज्ञ हूं कि मैं कुछ नहीं करता उनके लिए, तब भजन चलता है। और वो भजन थोड़ा भी चलता है तो उत्कंठा युक्त होता है। बाकी भविष्य जो भजन चलता है, भगवान ईश्वर हरि, न तस्मात, कैसे श्लोक प्रभु, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्मर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य अभय चाहने वाले व्यक्ति उन भगवान का भजन करे, ये भी अच्छा है। भाई से भी भगवान का भजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपकार को समझते हुए व्यक्ति जब भजन करता है, 15वें अध्याय में देखिए भगवद गीता के, ये पुरुषोत्तम योग है, उसमें भगवान उपकार दिखा रहे, मेरा क्या क्या उपकार है। जैसे सर्वस्य चाहम तक आधे श्लोक पर्यंत वो भौतिक उपकार बता रहे, ये सूर्य चंद्र इत्यादि जो कुछ भी, ये अग्नि इत्यादि तेज मेरा तेज है, जीवों को ये समझा रहे, उपदेश करा रहे कि तुम समझो इस बात को, मैं तुमको कितना स्नेह करता हूं, है ना। तभी तो उनको सुविधम सर्वता नाम, सब जीवों के परम सुयद परम हितेश वही है। तो कहते याद करो सहस्त परिवत्सरान अंतराम ओ कह, शरीर के बगैर तुम रहे, याद आया कि नहीं, याद दिला रहे, प्रलय में भी मैं तेरे साथ रहा हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये लिखते हैं महाप्रलयो यावत इति अर्थ, जब तक महाप्रलय रहा तब तक हम लोग उन बिना घर के, अर्थात भगवान तो नहीं, भगवान तो घर बार कुछ नहीं उनके लिए, परमात्मा के रूप में वो तो परिव्याप्त है सब जगह में, उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम घर बार बगैर का था, शरीर नहीं था तेरे पास, ये तो अभी शरीर दिया करके और भोग में लग गया, जब शरीर मिला खूब बढ़िया से भोगो और भजन भी चलेगा, तो भोग भी साथ में रख करके भजन चलेगा, महाराज ऐसा नहीं करना है, एक साथ में दोनों, भगवान बोले बेटा ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा, या तो तुम मेरा भजन करो तो माया का करो, दो में से एक चॉइस तुम्हारा है। भगवान क्या करे, भगवान ने नियम बनाए हैं, बाकी भगवान जीव के लिए कितना उद्विग्य है। आइए हम थोड़ा वृद्ध भागवता मृत में जाते हैं, वहां श्री सनातन गोस्वामी पाद का एक पात्र है, वो ब्रज कुमार करके एक पात्र है, तो वो जब वैकुंठ में जाता है और साक्षात भगवान का दर्शन जब करता है, तो वहां पर भगवान की सुंदरता का सब वर्णन आता है, उसमें हम नहीं जा करके जो दो तीन चार श्लोक में भगवान की जो उत्कंठा है ना, वो भी कई श्लोकों में उन्होंने लिखा है, लेकिन दो तीन चार श्लोक ये इसमें अद्भुत लिखा है, भगवान की ये जीव के प्रति जो एकदम वत्सलता है उनको दर्शा रहे। ये बात नहीं है कि केवल ये शास्त्र की ही बात है, देखिए सनातन गोस्वामी पाद जो कुछ लिखते हैं वो अनुभवात्मक बात है। ये हमारे गोस्वामी गण जब 500 साल पूर्व यहां पर रहते थे तो जो साक्षात्कार करते थे उसी को लिखा करते थे, ये नहीं का अनुमान, इसलिए उनका लिखा हुआ बात शास्त्र हो जाता था, वो एक शास्त्र हो जाता था, वो शास्त्र जितना ही सत्य है। तो याद कीजिए वो घटना को, उसमें जाएंगे नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद को जब राधा कुंड के तट पर मिले सनातन गोस्वामी पाद, बोले क्या लिख रहे हैं, बोले राधा जी का कुछ प्रशंसा लिख रहा हूं, स्तव लिख रहा हूं उनके लिए। बोले ठीक है, उन्नादि श्लोक का उच्चारण करो, जो मुख्य बंद श्लोक है पहला श्लोक उनका उच्चारण करो, जिसमें स्तुति करना होता है आराध्य देव के लिए। वहां पर उन्होंने लिख दिया कि उन राधा रानी की चोट, जिनकी चोटी काली नागन की तरह है। सनातन भयंकर उपमा है भाई, बस काली नागिन जैसी चोटी है। तो ये उपमा हमको ठीक नहीं लगा, बोलते ठीक है श्री पाद आप कुछ उपमा खोज करके हमको बताइए। बोला ठीक है, मैं देखता हूं। वो करते हुए घूमते हुए पूर्वी तट पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालिका को तीन चार बालिका झूला झूला रही थी। और इतनी सुंदर बालिका थी वो, झूले पर झूल रही थी। वो एक टक से देख रहे थे सनातन गोस्वामी पास उस बालिका को, तो बाला ने ऐसे सर किया, ऐसे सर किया। सनातन गोस्वामी पास ने देखा कि इसकी चोटी में नागिन है। अरे लाली लाली तेरी चोटी में नागिन। तब तक वो दृश्य अदृश्य हो गया। उल्टे पैर सनातन गोस्वामी पाद आकर के रूप गोस्वामी पाद को बोलते हैं, रूप ठीक लिखा है तुमने, जो लिखा है तुम्हारी उपमा ठीक है। तो सनातन गोस्वामी पाद जो भी लिखते हैं वो शास्त्र है। साधु की बात में ऐसी अटल श्रद्धा व्यक्ति को चाहिए कि वो साक्षात शास्त्र है, अन्यथा उन प्रबल और दृढ़तर भजन व्यक्ति कर नहीं पाएगा, दृढ़ता आ नहीं पाएगी भजन में। तो सनातन गोस्वामी पाद एक श्लोक लिखते हैं, वो कहते हैं कि स्वागतम स्वागतम दिष्ट्या दिष्ट्या भवान मया ना संग तो अत्र त्वत इच्छायाम ना चिम उत्कंठित न चिदम उत्कंठित। भगवान कहते हैं अरे बोले देख लिया मैंने तुमको। जब वो ब्रज कुमार पहुंचता है वहां तो भगवान कहते हैं कि देखो स्वागतम स्वागतम दो बार लिखते, आनंद के कारण सुस्वागतम बोल रहे हैं। एक जीव के लिए भगवान उच्चारण कर रहे हैं, बारंबार बोले स्वागतम स्वागतम कहते हैं। ये मेरा अहो भाग्य है कि तुम आ गया, तुम इन भोगों को छोड़ करके मेरा भजन करके तुम जो यहां आ गया। कहते बहुत दिन से मैं तुम्हारी राह देख रहा था और उत्कंठित होकर के मैं राह देख रहा था, मेरा भाग्य है कि तुम मुझे प्राप्त हो गए। ले के बताइए भगवान कितने उत्कंठित है जीव के लिए। ये प्रत्येक जीव का बात है, न केवल एक जीव की बात है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत उत्कंठित था, अच्छा हुआ सुस्वागतम तुम आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं कि बहुनी गमितांगम जन्मानी भवता सखे कथंचित अपि मया अभिमुख्यम किंचित कारी न। बोलते हे सखे बहुत बहुत जन्म से तुम घूम रहे हो, कहते हैं अनेक जन्म तुमने घुमा दिया, तुम घूम गए अनेक जन्म, लेकिन किसी भी प्रकार से भी मेरे प्रति थोड़ी सी भी उन्मत्तता तुमने एक भी जन्म में नहीं दिखाई। भगवान बता रहे जीव की स्थिति को बता रहे, ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अनेक जन्म से मैं तेरे साथ था और तुमने थोड़ा सा भी अभिमुखता नहीं दिखाया, उन्मुखता कहते हैं कि तुम नहीं दिखाए। अस्मिन अस्मिन यन एव भवे भावी मत भावी मत मुखम उन्मुखम इत्या आशया त्वात्यंतम नति तोस्मि अज्ञ वत्सदा। वो कहते हैं कि तुम अनेक जन्म बिता, प्रत्येक जन्म में मैं तेरे साथ रहा और ये सोच रहा था कि अभी इस जन्म में तुम मेरे उन्मुख हो गए, इसलिए मैं अज्ञ की भांति एक बालक जैसा नृत्य कर रहा था, बस अभी एक जन्म दिया है, अब तो मैं नाचने लगूंगा। मैं नाच रहा था कि अभी ये भजन करेगा। क्या उत्कंठा भगवान की। यद्यपि विस्तार से टीका में इन सारी बातों को सनातन गोस्वामी पाद ने इसी अपने ग्रंथ की अपने आप टीका किया, उसमें बहुत सुंदर बातें लिखी। भगवान की कितनी उत्कंठा है जीव के प्रति। और एक जीव जो देखता भी नहीं उनके सामने, उनके सामने तक देखने की उनको फुर्सत नहीं है, वो अपने काम में मस्त है इस संसार। और भगवान को केवल एक ही काम है, वो कौन जीव उन्मुख हो जाए वो उत्कंठित रहते हैं, कोई हुआ कोई हुआ। वो अत्यंत उत्कंठा से वो इस प्रकार भगवान कह रहे कहते हैं कि छलम चन्न लभे किंचित येनाड्यम परिपालनाय नो निबंधम स्वकृते भ्रातरान याम्या आत्मनः पदम। वो कहते हैं मान लीजिए जीव कहे कि तक इतना है तो हमको आप अपने आप करा दीजिए, आपके लिए कौन बड़ा काम है ना, आप क्यों उन्मुख नहीं करा लेते हैं, आप अपने से करा लीजिए। बोले मैं क्या करूं, मेरी कुछ वैदिक जो आज्ञाएं हैं उनका पालन अगर मैं नहीं करूंगा तो सब उनका उल्लंघन करने लगेंगे और मैं उनके बंधन में। इसलिए कहते हैं कि छलम च न लभेत किंचित इनाड्यम परिपालनाय, मुझे मेरे नाम जैसा छल मुझे नहीं आता है, मेरा नाम इस प्रकार का जीवों के साथ छल करता है। क्या नाम की महिमा भी साथ में गा रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद। इसलिए कहते भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। बोलते छल मुझे नहीं आता है, उन संकीर्तन यज्ञ की तरह वो छल मुझे नहीं आता, मेरे नाम की तरह मुझे छल नहीं आता, इसलिए मैं तो हिसाब किताब से जा रहा हूं। बाकी नाम थोड़ा सा कोई हिला से भी कोई किसी भी प्रकार से उच्चारण करता है तो कहते हैं गोप कुमार तुमने ये भी नहीं किया है, अभी तक ये भी नहीं किया था, इसलिए मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में तुमको प्राप्त हुआ। याद रखना चाहिए जब भी कोई साधु पुरुष का संगति होता है तो याद रखना चाहिए भगवान की कृपा है, निश्चित साधु संग इसलिए मिला है, वो स्वयं भगवान है, एक साधु गुरु के रूप में वो स्वयं भगवान है। और वो वेट करते हैं और साधु उनका प्रचार करते हैं, इसलिए जगत में भगवान को साधु जितना प्रिय है उतना कोई प्रिय नहीं है। कई जगह भागवतम में ये बात आती है, कई जगह खैर हम लोग कुछ और बातें भागवतम में हैं वहां पर जाते हैं। तो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और खास करके हमारे जैसे व्यक्ति कि जब हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं सिद्धांत को है? और थोड़ा बहुत शास्त्र समझ में आया है, उनको क्या करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। श्री सिद्ध स्वामी पाद ने एक श्लोक जो कोनो अत्यत्य अखिल गुरु भगवान प्रयास, उस श्लोक में श्री स्वामी पाद ने एक अपना एक श्लोक रचना किया है, उस श्लोक की टीका में बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं कि तो कोनो अत्यते न को अति प्रयास सुर बालकार हरे और को अत्यते अखिल गुरुर भव संभव लोप हेतु न प्रहलाद इस्तम उपमंटम मिथो नराणाम ईशेन सक्षम अकरोद अपनीय मायाम। भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपके लिए इन जीवों का उद्धार कौन बड़ी बात है। भगवान बोलते हैं, सबका उद्धार भाई कैसे करें, तुम अकेला उद्धार कर देता ना तुमको। अरे ये बोले, अकेले के करने से क्या है, मेरे तो और भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि आपके भक्त लोग का संगति मुझे प्राप्त है, मेरा कोई टेंशन नहीं है अपना। लेकिन उन मूर्ख लोग जो है, उनका हमें ज्यादा टेंशन है। और तभी तो आप पतित पावन कहे जाओगे। तो इस श्लोक को लेकर के सिद्ध स्वामी पाद कहते हैं कि देखिए, जब वही बालक को उपदेश कर रहे थे तो उस टाइम उन बालकों को क्या उपदेश कर रहे थे, कहते कौन अत्य अखिल गुरु भगवान को अति प्रयास सुर बालकर हरे उपासने स्वे दृदि छिद्रवत सतह सत्मन सक्षुर अशिष देही नाम सामान्यतः किम विषयोपादा नहीं। प्रश्न करके ये प्रश्नार्थ चिन्ह के साथ श्लोक दिया गया है। वो कहते हैं के असुर कुमार, हम सबके हृदय में उन छिद्रवत आकाश की भांति भगवान प्रत्येक के हृदय में रहते और सबके प्रिय है और सबको वो प्रेम करते हैं, सबके हितैषी है। तो कहते उनको छोड़ करके उन विषय उपादान विषयों को इच्छा करना, बोले साक्षात वो अपनी आत्मा है। जीव जब तक इस शरीर में भगवान है या ये शरीर अगर भगवान न रहे जीवात्मा के साथ, जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे कि जैसे हमारा देह है उसी प्रकार भगवान का जीवात्मा देह है, क्योंकि जीवात्मा स्प्रिट है और भगवान जीवात्मा के अंदर रहते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या लगा हमको, गलत नहीं है, ठीक है। बोले साक्षात आत्मा है, और उनको छोड़ करके फिर विषय बटोरना, पर ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। वहां ये कह रहे हैं कि को अति प्रयास हो, अपना व्यक्ति को प्रसन्न करना, उसमें भी हृदय में रहने वाले लोग वही व्यक्ति को प्रसन्न करना कौन बड़ी बात है। श्रवण कीर्तन थोड़ा कर लो, भीतर है, प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा का सामान भी ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई ज्यादा प्रयास नहीं इसमें। लेकिन प्रहलाद महाराज जानते हैं कि जीव के लिए इन मायाबद्ध अवस्था में भोगों को त्यागना, माया को त्यागना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन है। इसलिए वो भगवान को बोलते हैं, भगवान आप उद्धार कीजिए। उधर जीव को बोलते कौन प्रयास करना है, थोड़ा नाम संकीर्तन इत्यादि जप इत्यादि कर लो बस, और वस्तुतः हो जाता है। कैसा भी करके देखो, अजामिल ने कोई जानबूझ करके नाम नहीं लिया था, तथापि भगवान उनको वैकुंठ लेके गए। गोप कुमार को माध्यम बनाकर के सनातन गोस्वामी पाद हम लोग को उपदेश करते कि इसी प्रकार अगर एनकेन प्रकारण हम लोग नाम थोड़ा ले लेंगे, काम हो जाएगा। भगवान नाम थोड़ा ले लेने से हमारा बहुत बड़ा काम निकल जाएगा, बहुत बड़ा। फिर भगवान का टेंशन होगा, वो हमको बचा बचा करके इस संसार में साधु संगति में डालते रहेंगे, उठा उठा कर। नहीं चाहते हुए भी ब्रह्मचारी बन गए, क्या कर रहे हैं, अभी रहना पड़ेगा, अभी करना पड़े। लाल कपड़ा है, यह है, देख भी नहीं सकते, इधर उधर लाल कपड़ा है, ऐसी स्थिति में रख देते हैं भगवान, करना पड़ेगा, है ना। भगवान व्यवस्था देते हैं इस प्रकार की। जब थोड़ा बहुत उनके नाम का थोड़ा हास्य करने वाला व्यक्ति, उनका महाभाग्य का दरवाजा खुल जाता है। सिर्फ सनातन को साक्षी है, तो अपना कोई बात नहीं चल रहा है। इससे बढ़कर नाम महिमा क्या हो सकती है ना। लेकिन जो लोग तत्काल ये करना चाहते हैं, इसी जीवन में करना चाहते हैं, उनको सिद्ध समीपद के श्लोक देख लेना चाहिए। वो कहते हैं एक साइड बालकों को कि कोई प्रयास नहीं है, ज्यादा नाम संकीर्तन करो बस हो गया, हाँ। और भगवान को बोलते हैं भगवान आसान नहीं है, ये पवित्र निश्चय उद्धार होना जीव का आसान नहीं है, आप उनका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा ये होगा नहीं। तो इधर भगवान करते हैं और उधर जीव को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मायाम उपया मायाम कहते हैं उप नहीं प्रहलाद इत्तम उपमंत्र, उन दोनों को आमंत्रण करके मिथो नराणाम ईशन, कौन कौन नर जीव और ईश्वर को संयोग कराते हैं। सक्षम अकरोत अपनी मायाम, उनका सख्य कराते हैं। प्रचारक को ये चाहिए कि वो जैसे तैसे बोल करके हो, आचरण से हो, जैसे हो, उनको ये काम कर लेना चाहिए। भगवान को बहुत पसंद है, बहुत पसंद। इसी से उत्कंठा युक्त भजन व्यक्ति को मिल सकता है, इसी जीवन में गिफ्ट दे देंगे भगवान उत्कंठा युक्त भजन को। और आगे केवल एका दो तीन देह बस है, आगे उत्कंठित होकर के भजन व्यक्ति करते हैं, उनके लिए ज्यादा देह जरूरी नहीं है, एकाध दो बार बदली करने से भी पार लग जाएंगे। तो ज्यादा टाइम उत्कंठाहीन भजन से होता है, उत्कंठित नहीं है उतना देर लगेगा, जाएगा तो जाएंगे, भगवान तो लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि नाम का आश्रय कर लिया, वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उत्कंठा, जैसे भगवान उत्कंठित है जीव के लिए, इधर जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान तथै पचाम्यहम्, हाँ? भगवान कहती है। और भगवान ने प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पर बड़ा ये भजन नहीं कर सकते, ये ब्रह्मांड का जितना जीव है उनको उद्धार कर दीजिए, भगवान बोलते हैं उद्धार कर देंगे, वापस भर जाएगा जीवात्मा का कमी नहीं तो वापस भर जाएगा। और भगवान ने कर दिया, पता नहीं हम लोग कहां घूम रहे थे, कौन ब्रह्मांड में रह गए, नहीं तो एक गिफ्ट था प्रहलाद महाराज के द्वारा, एक ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया था, जितने जीवे भगवान कीजिए कीजिए, बोले ठीक है प्रहलाद, लेकिन भर गया, क्योंकि हम पुरंजन है, ये तो हमारा उपाख्यान है, शरीर के लिए भोग खोजते, भोग के लिए शरीर खोज रहे हैं, और बोले इधर कम लोग है इधर अच्छा है, वो भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं है, कम लोग इधर इधर चाहिए, पुनः हम लोग ने भर दिया इस ब्रह्मांड में, है ना। ये बहुत सुंदर उपदेश इन श्लोकों से मिलता है, ये भगवान की उत्कंठा, यहां उत्कंठा का दर्शन हो रहा है, वो कितने उत्कंठित है, चार पांच श्लोक में क्या समझाने का जरूरत है उनको, लेकिन समझा रहे। वस्तुतः नारद मुनि का हृदय है, ये भक्त का हृदय है, हा ये भक्त का हृदय बोल रहा है, ये तो रूपक है, जैसे सनातन गोस्वामीपाद का हृदय बोलता है, उसी प्रकार यहां नारद जी का हृदय बोल रहा है रूपक के रूप में। तो अगर ये कोई कार्य करे, कोई बोलता नहीं हमको बोलना नहीं आता, ठीक है पुस्तक वितरण करो, बोला गया है पुस्तक में, प्रभुपाद जी ने बोला है, है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हम जब किसी को एक पुस्तक देते हैं ना, कृष्ण देते हैं, कृष्ण ये लो, भगवान ले लो, क्योंकि पुस्तक में ऐसा उपदेश है, इसको पाठ करके कई लोग आ गए हैं, लाखों लाख लोग आ गए हैं, मैराथन है ना, अपने से कुछ बोलना नहीं आता है कोई, तो फिर पुस्तक वितरण किया जाए और उनके माध्यम से भगवान की प्रसन्नता हम लोग प्राप्त करें, क्योंकि ऐसे ही साधु संगति हमारे पास है, जिनके पास साधु संगति है उनको कोई भय नहीं है, श्री भगवान इसको कहे हैं एकादश स्कंध में, तावै सुनवंती गायंती ये अनुमोदंती चादृता न मत पराश्रयान भक्ति विन्दति ते अपि ते मई आ। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन साधु संगति में बैठ करके श्रवण करता है, गायन करता है मेरी कथा का, या अनुमोदन करता है, या मेरे भक्त का आदर करता है, तो कहते हैं, वो कहते हैं मत पराश्रद्धानश्च, मुझ में उनकी पराश्रद्धा हो जाएगी। पराश्रद्धा का क्या अर्थ है? एक श्रद्धा भौतिक होती है कुछ लाभ के लिए, लेकिन बड़ा, और कहते भक्तिम विन्दति में ते मई, और वे जल्दी मुझ में प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कहते क्यों बोले भक्तिम लब्धवत साधो किम अन्यद अवशिष्यते। जिन लोग को साधु संगति प्राप्त हुआ है उनको क्या करने की आवश्यकता है? केवल जो साधु बोले वही कार्य, उनके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भक्तिम लब्धवता साधो कि किम अन्यद अवशिष्यते, मैं अनंत गुणेर ब्रह्मणि अनंत आनंद अनुभवात्मनि। तो शीघ्र ही उन परमानंद घन मेरा दर्शन कर लेगा, उनके लिए क्या दूसरा आवश्यक। तो इस प्रकार इसका जो तात्पर्य है तीन चार श्लोकों का, तो वो वही है कि भगवान की उत्कंठा जो हमारे पति है ये हमें समझना चाहिए। कितना याद दिला रहे, चार चार पांच पांच श्लोकों में भगवान याद दिला रहे, ये जानते हुए भगवान के उपकार को समझते हुए हम लोग को चाहिए कि नित्य प्रति इस प्रकार की कथा में पाठ में बैठना चाहिए, और साधु लोग जो जो आदेश करते हैं उनका पालन करके हम लोग बहुत अति शीघ्र सिद्धि लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।